પરમ પૂજ્ય શ્રી નારાયણ મહારાજ ના ચરણ કમળ માં લાખ લાખ વંદન સહ આપ તરફ રહેલા ભક્તજનો ને સ્વર્ગદારી આવતા સાથે વંદન આપી. આજે નારાયણ પૂજ્ય નારાયણ મહારાજ ના 3 દિવસ ના કાર્યક્રમ આપણા મંદિર ની અંદર રાખવામાં આવ્યો છે. આજ આવતીકાલ અને પરમ દિવસે 3 દિવસ નો આપણને પ્રવચન નો લાભ મળશે. હવે કાર્યક્રમ શરૂ થાય તે પહેલા આપણે મંદિરની પ્રાણિકા પ્રમાણે આપણે એમનું સ્વાગત કરીશું. આજનું સ્વાગત આપણા મંદિરના સત્યશ્રી માતાજી પ્રવીણભાઈ આચાર્ય ને વધુ સતત થશે તો હું પ્રવીણભાઈ અને આપણા પધારી કથકભાઈ ને વિનંતી કરું કે અહીંયા પધારી પ્રથમ પોતીનું અને પૂજ્ય રાજજી નું આપણે સ્વાગત કરીએ.
કસ્તુરે તિલકમ લલાટ પટલે વક્ષસ્થળે કૌસ્તુભમ નાશાબ્દે વરમોક્ષિતમ કરતરે વેણુકરે સુખકણમ સર્વાંગે હરિચંદનમ સુલલિતમ કંઠે ચ મુક્તાવલી ગોપાલશ્રી હરિ કિશોર વિજયતે ગોપાલ ગુરુર્બ્રહ્મા ગુરુર્વિષ્ણુ ગુરુદેવ મહેશ્વર ગુરુ સાક્ષાત પરબ્રહ્મ તસ્મૈ શ્રી ગુરવે નમઃ
હવે ખાલી 1 મિનિટની અંદર આપની જાણકારી માટે પૂજ્ય નારાયણ મહારાજનો હું ટૂંકમાં પરિચય આપું છું. પૂજ્ય મહારાજજી શ્રી મથુરા વૃંદાવન થી પધારેલા છે. એમની 72 વર્ષની ઉંમર છે. નાનપણથી એ ધર્મ માટે સારું જ્ઞાન ધરાવે છે અને એ અહીંયા રસ્તા આવતા પહેલા એમને પોલેન્ડનો પ્રવાસ પૂરો કર્યો છે. પોલેન્ડથી ગઈકાલે અહીંયા આવ્યા છે. સાથે પોલેન્ડના ઘણા શિષ્ય પણ રસ્તા ખાતે પધાર્યા છે. એમના અહીંયાના પ્રવાસ કરવાનું કારણ મુખ્ય કારણ આપણો ધર્મ જ્ઞાન આપવાનું અને ચૈતન્ય મહાપ્રભુજીના આશીર્વાદ સાથે એમને જે જ્ઞાન લીધું છે તે આપણને જ્ઞાન અર્પણ કરવા અને આપણા જીવનનું ધન્ય જીવન કેવી રીતે જીવવું એ બતાવશે. પૂજ્ય મહારાજજી ભગવત પર આજે પ્રવચન આપશે અને એ પુણ્યમાં આપશે એટલે આપણને સર્વને જાણકારી મળશે. હવે બધા સમય ન લેતા હું પૂજ્ય મહારાજજીને પ્રાર્થના કરું કે એમના પ્રવચન આપણને લાભ આપે. વિશેષ પ્રવચન બાદ આપણે ડાઇનિંગ હોલની અંદર પ્રસાદની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. દરેક ભક્તજનોને પ્રસાદ લઈને જવાનું છે. એ એમના તરફથી અને એમના ભક્તજનો તરફથી અગ્રભરી વિનંતી સાથે આપણને જાણ કરવામાં આવે છે. પરમ પૂજ્ય મહારાજના ચરણમાં વંદન સર એમને અગ્રે આપણે સર્વ ભક્તજનોથી વિનંતી કરીએ કે એમના જ્ઞાનનો લાભ આપણને આપે.
ધ્યાનકેન્દ્રાનંદસ્ય ધ્યાનંજનકલાશ ચક્ષુરુન્મીલિતં યેન તસ્મૈ શ્રીગુરવે નમઃ. દંતાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપાસિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમો મહાભગન્નાય કૃષ્ણ પ્રેમ પ્રદાયતે કૃષ્ણાય કૃષ્ણ ચૈતન્યનામ્ને ગૌરસ્તુતે. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગત્પતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધાકાંત નમસ્તુતે. સપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વિષભાનુસુતે પ્રણમામિ નૈઃ શ્રીકૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શિવાચાર્ય શ્રી ગૌરભક્તવૃંદ. Hare Krishna,
Hare Krishna,
Krishna Krishna,
Hare Hare,
Hare
Rama, Hare Rama, Rama Rama.
मैं करीब एक महीना पहले वृंदावन से यात्रा की, 3 महीने के लिए विदेश यात्राओं में राधा कृष्ण युगल की भक्ति को प्रचार करने के लिए गीता और श्रीमद् भागवत वेद उपनिषद हम लोगों के उपजीव्य ग्रंथ हैं। आज मैं बहुत आनंदित हुआ कि बहुत दिनों के बाद में इस प्रवास में मैं हिंदी में बोलने जा रहा हूं। यद्यपि यहां रहने वाले केवल अंग्रेजी जानने वाले जो भक्त हैं उनको मेरी भाषा समझने में कठिनता होगी, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड बाई हिंदी लैंग्वेज फॉर डिवोटीज टू नो आर मल्ली नोइंग इंग्लिश। किंतु आज मैं प्रसन्न हूं कि मैं आज हिंदी भाषा में, मैं जानता हूं कि ये जितने भी उपस्थित हुए सभी कृष्ण भक्त हैं, सभी लोग वैष्णव हैं। भारत के जितने भी लोग हैं करीब करीब अधिकांश लोग पुष्पों को छोड़कर के राधा कृष्ण और श्री राम सीता के उपासक जरूर उनका उसमें। मैं यहाँ पर 3 दिन का शायद हमारा प्रोग्राम रखा गया है जिसमें आज श्रीमद् भागवत के संबंध में कैसे भागवत का प्रारंभ हुआ, कैसे गोलोक वृंदावन से ये श्रीमद् भागवत यहाँ पर इस जगत में उपस्थित हुए जगत के कल्याण करने के लिए, आज इससे संबंध में बोलूंगा। और कल और परसों मैं चेष्टा करूंगा ये कृष्ण की जो लीलाएं हैं उनमें क्या छिपा हुआ है रहस्य, इसलिए हम लोग आज श्रीमद् भागवत को प्रारंभ से मैं थोड़ा सा इसके संबंध में प्रसंग अवस्था थोड़ा सा कहना चाहता हूं। यद्यपि गुजराती भाषा हिंदी भाषा करीब करीब एक ही थोड़ा सा अंतर होगा तभी आप लोग हमारे भावों को जरूर समझेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है, क्योंकि ये सब संस्कृत की कन्याएं हैं। हिंदी, बांग्ला, गुजराती, ये सब जितने हैं हमारी संस्कृत भाषा की ये प्यारी बेटियां हैं, इसे इसको समझने में कोई कठिनता नहीं। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक आया है, निगम कल्पतरुर् गलितं फलं सुखमुखाद् अमृत द्रव संयुतम् पिवत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भू भागवत। निगम कल्प स्वरूप गलितंग फलम, ये जो श्रीमद भागवत जिसको सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज जी की सभा में श्रवण कराया वो साधारण एक पुस्तक नहीं है। निगम कल्प स्वरूप गलितंग फलम, जितने वेद हैं, उपनिषद हैं, जितने पुराण हैं, पुराण कंदर में 36 पुराण हैं, मुख्य पुराण, उप पुराण और शाखा पुराण, जितने भी भाग हैं रामायण और महाभारत, ये सब भारतीय संस्कृति के मूल ग्रंथ हैं। इनको पेड़ कहा गया है, वृक्ष कहा गया है, और उन सब का फल ये श्रीमद् भागवत। जैसे हम पेड़ की जड़ से वह मिठास और रस नहीं पा सकते जो आम के सुंदर पके हुए मधुर फलों में अत्यंत मीठा स्वाद होता है, वृक्ष की जड़ चाटने से, उसको चूसने से, उसको डालियों को चूसने से, पत्तों को चूसने से, फूलों को चूसने से नहीं मिलेगा। किंतु वह जब बड़ा होकर के वृक्ष उसमें मंजरियां आएंगी और उसमें मधुर मधुर फल लगेंगे और वो सूर्य की रोशनी में पकेंगे, अत्यंत मधुर हो जाते हैं, तब उसका सुंदर स्वाद आता है। उसी तरह से ये श्रीमद् भागवत वेद उपनिषद शास्त्र जितने भी हैं, रामायण महाभारत पुराण, इन सबका सार ये श्रीमद् भागवत है। वैसा फल है जिसमें कि गुठली नहीं, छिलके नहीं, उसमें फेंकने योग्य कोई चीज नहीं, रस ही रस भरा पड़ा है। ये पृथ्वी का कोई फल नहीं है, ये गोलोक वृंदावन से यहाँ पर कि कृष्ण नित्य निवास करते हैं, बैकुंठ से भी बहुत ऊपर, बैकुंठ से भी ऊपर अयोध्या इत्यादि, उससे भी ऊपर द्वारका, उससे भी ऊपर मथुरा, उससे भी ऊपर वृंदावन धाम, वृद्धाम, वहां से ये फल आया। कैसे आया? गुरु परंपरा की धारा में सुखदेव गोस्वामी जी इसको प्राप्त किए। ब्रह्मा जी को पहले, ब्रह्मा जी से नारद, नारद से व्यास, व्यास से सुखदेव गोस्वामी को, और वो लेकर के जगत में आए। कैसे? कृष्ण की लीला ने, कृष्ण के लीला ने, जब उस समय में कृष्ण नंदगांव में थे, और श्रीमती राधिका जी अपने पीहर, अपने पिताजी के घर बरसाना में थी। दोनों की दूरी अधिक दूरी नहीं है, इसमें भी 4 मील के से कम ही में होगा, 4 माइल की दूरी, उस समय के लिए दूरी बहुत थोड़ी ही थी। राधा जी अपने पिताजी के घर पर, यहाँ पर अभी बरसाना का मंदिर है, उसी जगह एकांत में एकदम वृक्ष के नीचे अपने एक तोते को पढ़ा रही थी, सुख पक्षी को पढ़ा रही है। बोलो तो जरा, कृष्ण कृष्ण, वो सुख पक्षी ठीक अभी कल हु बहु राधा जी के स्वर में, जैसे राधा जी कर रहे उच्चारण, जैसा उनका मधुर स्वर है, ऐसे वो सुख पक्षी भी कृष्ण कृष्ण कहने लगा। राधा जी बड़ी प्रसन्न होकर के उसके सिर पर और पीठ पर अपनी मधुर कोमल हाथों को सहलाती हुई उसको अनार के दाने को खिलाने लगी, दूध और चावल खिलाने लगी, और कहते फिर बोलो, तो फिर कहता है कृष्ण कृष्ण। किंतु थोड़े देर के बाद में पक्षी चंचल होते हैं, वो उड़ गया, और उड़ करके वो धीरे धीरे नंदगांव में पहुंचा, जहाँ पर के कृष्ण अपने सखा मधुमंगलों के साथ में एक तमाल वृक्ष के नीचे बैठे हुए आलाप कर रहे थे। आलाप किस विषय में होगा, श्रीमती जी से कैसे भेंट हो, इसके विषय में। थोड़ी देर के बाद में उड़ता हुआ वो सुख पक्षी वहां आया, और तमाल वृक्ष के डाल पर बैठकर वो कहने लगा बड़े मधुर स्वर से, कृष्ण कृष्ण। कृष्ण ने देखा कि कहां से ये राधा जी बोल रही हैं, इधर उधर देखा तो राधा जी तो है नहीं, तो वो देखा इधर उधर तो देख करके देखा ये तमाल बात वृक्ष की डाल पर, ये बहुत ही सुंदर लाल चोंच वाला सुख पक्षी बैठा है। इतने में वो फिर कहने लगा, कृष्ण ने कहा अरे जरा बोलो तो क्या बोल रहा था, तो उसने फिर कहा कृष्ण कृष्ण। कृष्ण बड़े प्रसन्न, इतने में वो रोते रोना रोने के स्वर में बोलने लगा, रोता हुआ वो बोला कि ओ मैं बड़ा ही अकृतज्ञ, मैं बड़ा अकृतज्ञ, मैं प्यारी सीता उनके राधा जी के हाथों में खेल रहा था, वो मुझे खिला रही थी, लाड़ प्यार कर रही थी, और मैं अपनी सामने श्रीमती राधिका जी को छोड़ करके मैं कहां यहां आकर फंस गया, और बड़ा अफसोस करने लगा दुरात्मी इत्यादि श्लोकों में। कृष्ण ने कहा जरा फिर से कहना, तो फिर से कहने लगा मैं पक्षी जाति का हूं, हमारी सामने मुझे बड़ा लाड़ प्यार करती थी, खिलाती पिलाती थी, और बड़ा प्यार करती थी, कृष्ण कृष्ण कहती थी, आज मैं उनको छोड़ करके मैं अकृतज्ञ हो करके और मैं यहां पर आ गया नंदगांव में, मुझे धिक्कार है, मुझे धिक्कार है। कृष्ण ने उसको बड़े प्यार से बुलाया, और ऐसे पुचकार करके बुलाया जैसे वो आकर के उनके कंधा पर बैठ गया। कृष्ण ने उसको अपने हाथ में ले लिया, और पुनः पुनः कहने लगे जरा बोलो तो तुमने क्या कहा, उसी प्रकार से कहने। इतने में ललिता जी और विशाखा जी बरसाने से दौड़ती हुई आई और कृष्ण से कहा, ये मेरी प्यारी सहेली राधा जी का ये सुख पक्षी है, तुम इसे दे दो, वो इसके बिना रह नहीं सकती। कृष्ण ने कहा, यदि तुम्हारी यहां से ले लो, बुला लो, पर ये संभव पर नहीं है। तुम्हारे हाथ में जाकर के कोई लौट आए ये कभी संभव पर नहीं है। तुम्हारे यहां जो आ गया तो तुम्हारा बन गया है, यदि तुम्हारा ले लो। तो उसने बुलाने की चेष्टा की, ललिता बिचारा किंतु नहीं आया। उन्होंने बुलाना दिया, यदि हमारी प्यारी सहेली श्री जी होती तो बुलाती तो वो जरूर चला आता, तो ठहरो हम लोग ऐसा चेष्टा कर रहे हैं। इतने में ये ललिता विशाखा जी यशोदा जी से जाकर बुलाना दिया, जे हमारे हमारी प्रिया जी का ये तोता कृष्ण ने रख लिया और नहीं दे रहा है, हमारी प्रिया जी तो इसके बिना जीवित नहीं रहेंगी। तो जैसे था मैं अभी लाता हूँ, ये कह करके बोल गई। और कृष्ण जी आप उनके साथ में मधुमंगल के साथ में सुख पक्षी के साथ में खेल रहे थे, प्यार कर रहे थे, उन्होंने झपट करके उसे पकड़ लिया। कहा, तुम्हारे पिताजी अभी खाने के लिए बैठे हैं, तुम सब समय जानवरों और पक्षियों के साथ में खेल करता है, तू बड़ा गंदा लड़का है। बस उन्होंने कान पकड़ लिया और पकड़ करके खींच करके ले आई। किसको पकड़ करके ले आई? जो समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, पलक में सृष्टि स्थिति और प्रलय करने वाले जो ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, उनके भी मूल ईश्वर हैं, सर्व कारण कारण ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि राजगोविंद सर्व वो कृष्ण। ब्रह्मा जी डरते हैं, काल उनसे डरता है, सभी लोग डरते हैं, सभी उनके अंश और कला है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान पर ब्रह्म है। यशोदा जी उसको झट पकड़ करके और लेकर के और तोते को पकड़ लिया और जाकर के उनको दे दिया, ललिता भी चाह ले जाओ। और कृष्ण को पकड़ करके स्नान स्नान करा करके और कहने, तुम बड़ा गंदा लड़का है, तुम ढोल में लूटता है, घरों में जाकर के मक्खन चोरी करता है, ये अच्छी बात नहीं है, तुम्हें शादी नहीं होगी, कोई भी लड़की बड़की तुम्हारी शादी तुमसे नहीं करेगी, तू झूठ बोलता है, मक्खन चोरी करता है और देखने में भी काला है, कैसे तेरी शादी होगी? कहीं नहीं मैया, ऐसा मत करना कि हमारी शादी रुक जाए, हमारे लिए एक लड़की अच्छी सी चाहिए जो अधिक पतली हो, दुबली हो, हमसे मोटी अधिक ना हो और बातचीत करने में तेज ना हो,
गोरी हो,
हाँ, और गोरी हो। कहिए नहीं, पहले तुम इस चीज को छोड़ो, तब इसके बाद में होगा। खैर इसके बाद में सुख पक्षी तो इनके पास में आते और इधर में कृष्ण की लीला समाप्त हुई ब्रज से और वो लीला सब बैकुंठ में पहुंची, गोलोक में पहुंची। इधर कृष्ण ने और राधिका जी ने दोनों ने आदेश दिया, जैसे रामचंद्र जी अपने लीला समाप्त किया तो हनुमान जी को कहा, आदेश दिया, प्यारे हनुमान हम लोगों के जाने के बाद में तुम इस पृथ्वी में रहना और लोगों की सहायता करना, लोगों को हरिनाम लिलवाना और तुम सब लोगों को भगवत नाम में सहायता करना, जैसे भक्ति संसार से लुप्त न हो जाए। इसलिए हनुमान जहां रहते हैं सब जगह वो रहते हैं, जहां हरि कथा होती है सबसे पहले आते हैं, जब हरि कथा समाप्त होगी तो सबसे पहले पीछे जाते हैं, सब समय भगवान राम की सेवा करते हैं। बड़े हनुमान जी बड़े दुखी हुए, तो भी भगवान के आदेश को पालन करने के लिए रामचंद्र जी के लीला के बाद भी वो रहे और प्रचार किए अभी तक हैं। जहां जहां हरि कथा होगी जरूर आएंगे, यहां पर भी हनुमान जी किसी न किसी वेश में जरूर होंगे। तब जब भगवान ने उनसे कहा, श्रीमती जी ने उनसे कहा कि आप हम लोग जा रहे हैं, हमारे जाने के बाद में भी भगवान की भक्ति का प्रचार हो, आपके द्वारा श्रीमद् भागवत का प्रकाश होगा और विश्व का कल्याण होगा, इसलिए आपको रहना होगा। भगवान का आदेश को उन्होंने पालन कर लिया, मान लिया। भगवान तो चले गए, उनकी लीलाएं चली गई, सखियां चली गई, सखे चले गए, नंद और सभी लोग चले गए। अब ये बड़े उदास हो गए। तीन सत्संग न पा वही प्राणी, बिना सत्संग के भगवत गति नहीं मिलती है, चाहे लाख कोई उपाय करे। श्रुति सिद्धांत यह है, उर्गारी भजिए राम सब काज विसारे, सब काम बिगड़ जाए तभी राम का भजन करो, कृष्ण का भजन करो, यदि सब कुछ बिगड़ गया और भगवान का भजन हुआ तो सब ठीक है और सब कुछ ठीक है, किंतु भगवान का भजन नहीं हुआ तो सब बेकार का गया। राम नाम को अंक है सब साधन है सुन। राम का नाम, कृष्ण का नाम एक है, उसके बाद में एक जीरो दो, दो जीरो दो बढ़ता जाएगा, सौ गुणमान बढ़ जाएगा, दस गुणमान बढ़ता जाएगा, और एक हटा दो लाख सुन रखो कोई मूल्य नहीं। इसलिए आप सब कुछ करते हैं और भगवान का भजन नहीं है तो बेकार का गया, और यदि कुछ भी नहीं किया किंतु भगवान का भजन किया, विदुर हैं, नारद जी हैं, हनुमान जी हैं, ऐसा यदि भजन किया तो जीवन सफल है। ये संसार में किया हुआ कुछ भी आपके साथ में नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं जाएगा, आपने जो यदि भगवान का भजन किया तो वही जाएगा। तो वो खोजने लगे साधु संघ कहाँ है, और ये मिलेगा साधु संघ से, खोजते 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 कैलाशपुरी में गए, यहाँ पर शंकर जी भगवान महादेव पार्वती जी से भगवान की यही अमृतमयी भागवत की कथा सुना रहे थे। जो सुनेगा वो जरूर अजर अमर हो जाएगा। प्रारंभ से उन्होंने आरंभ किया, जब कथा थोड़ी सी हुई, दूसरा तीसरा स्कंद आया, उसमें सृष्टि तत्व आया, कुछ गंभीर दार्शनिक तत्व आए, तो वो जरा जम्भाई आने लगी। थोड़ी देर के बाद जम्भाई आने के बाद में धीरे धीरे हुंकारी भर रही थी, हाँ हाँ और आगे और कहिए, बहुत अच्छा, किंतु करते करते वो सो गई, किंतु वो जो ध्वनि थी, आगे आगे कहिए, बहुत ही सुंदर, आगे कहिए, और ये हुंकारी चलती रही किंतु वो सो गई। कौन हुंकारी भर रहा था? ऊपर में जो डाल पर बैठा हुआ सुख था, वही हुंकारी भर रहा था। जब ये श्रीमद् भागवत समाप्त हो गया तो पार्वती जी उठ गई। बहुत से लोग हरि कथा में सो जाते हैं, जिनको रुचि नहीं होती, संसारिक विषय में रुचि है वो तो जरूर सोएंगे, जिसको नींद 10 वर्ष नहीं आए और भागवत सुने तो उनको नींद आ जाएगी। इसलिए खूब संभव करके भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए। तो हुंकारी जब चलती रही, पार्वती जी ने मैंने तो सुना नहीं, तो उन्होंने कहा तो कौन सुना, देखना चाहिए तो कोई अयोग्य आदमी तो नहीं सुन लिया। इसलिए वो देखने लगे शंकर, देखते देखते देखा जी आम के वृक्ष के ऊपर में एक सुंदर सा छोटा सा सुख पक्षी बैठा है, वही हुंकारी भर रहा था। अनित्य तो अयोग्य व्यक्ति है, इसको मार डालना चाहिए, इसलिए त्रिशूल उठाया उसको मारने के लिए दौड़े, और वो भी वहां से उड़ा और झट उड़ करके पास ही में व्यास जी का आश्रम था वहां पर पहुंचा। शंकर जी ने उसका पीछा किया मारने के लिए। वहां पर भगवान की कथा ये कह रहे थे व्यास जी, उनकी पत्नी का नाम दीपिका, वो सुन रही थी और सुन करके बड़ी आश्चर्यजनक उसको लगा, आश्चर्य से और सुन रही थी, इतने में उसके मुख में वो प्रवेश कर गया और पेट में चला गया। शंकर जी ने आकर के व्यास जी को प्रणाम किया, पूछा कि वो सुख पक्षी एक उड़ करके इधर है। मैंने कहा जी सुख पक्षी थी आपको क्या जरूरत है? मैंने कहा जी उसने श्रीमद भागवत सुन लिया तो हो गया, तो क्या हो गया सुन लिया तो वो योग्य नहीं था किंतु वो सुन लिया, तो श्रीमद भागवत सुनने का फल क्या है? अजर आदमी बन जाता है, अमृत बन जाता है, उसका जीवन बहुत अमृत के समान हो जाता है, वो कभी नहीं मरता है। व्यासी ने पूछा तब फिर उसको मारने के लिए क्यों आ रहे, यदि वो अमर ही हो गया, अजर हो गया, उसको तुम कैसे मार सकते हो? आप बड़े सीधे हैं, सरल है, भोलानाथ है ना, इसलिए ऐसा कर रहे उसको मारने के लिए। वो मर नहीं सकता, आप मारने से भी नहीं मरेगा, उसको कोई अस्त्र नहीं छू सकता, वो आग में नहीं जलाया जा सकता है, आत्मा का अजर अमर है। उन्होंने कहा ठीक ही कर रहे हैं, तब फिर वो हट करके लौट गए। 12 वर्ष तक, कोई कहते हैं 16 वर्ष तक वो अपनी माता के गर्भ में रहे। व्यास जी ने कहा जी भाई अब तुम माता जी के गर्भ से निकल आओ। उन्होंने कहा मैं माया में नहीं आऊंगा, यदि माया को हटा दिया जाए तो मैं उसमें आऊंगा। व्यास जी ने कहा मैं समर्थ हूं माया को हटाने के लिए, एक क्षण के लिए मैं माया को हटा रहा हूं, तुम निकलो। उन्होंने कहा तुम्हारे ऊपर में हमको विश्वास नहीं है, यदि कृष्ण स्वयं आएंगे और कहेंगे तब मैं मानूंगा। व्यास जी ने कृष्ण को आह्वान किया, कृष्ण द्वारका से वहां पर पहुंचे, पहुंच करके कहा जी भाई तुम कौन हो, इसमें से निकलो, मैया को कष्ट मत दो। उन्होंने कहा जी आप कौन है, मैं कृष्ण हूँ। तो ठीक है, जब आप करें तो मैं जरूर हूँ। इसलिए कृष्ण ने कहा कि देखो तलवार की धार पर एक सर्पों का दाना गिराया जाता है, वो जितनी देर तक वहां पर ठहरता है उतनी देर के लिए माया को हटा देता हूँ। माया माने क्या, माया कहते हैं किसको, माँ नहीं या जो, जो नहीं है उसको वही मानना, शरीर मैं नहीं हूं उस शरीर को मैं मानना, मैं ये शरीर से जो संबंधित हैं, ये मेरे पिताजी हैं, ये मेरी मैया है, ये मेरी भैया हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे पति हैं, ये जितने भी जगत के संबंध हैं वो सब मिथ्या हैं, आज नहीं कल जब मर जाएंगे तो संबंध जहां के तहां धरे रह जाएंगे। जिसको तुम अपना मान रहा है ये शरीर मट्टी है, मट्टी में मिल जाएगी, जब तक इसमें आत्मा है तब तक ये चलती फिरती है, जागती है, सोती है, चलती है, सब कुछ। जिस समय आत्मा निकल जाएगी इसका तनिक भी कोई मूल्य नहीं रहेगा, घर में एक मिनट के लिए कोई घर में नहीं रहेगा, जब भूत आ जाएगा, घर अपवित्र हो जाता है मरा आदमी रहने से, जितना भी प्रिय हो मरने के बाद में हटाना पड़ेगा, उसे जलाना पड़ेगा, उसे कब्र देना पड़ेगा, उसे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों को समझना चाहिए हम ये शरीर नहीं है, मैं कृष्ण का नित्य दास हूं, जीवों का स्वरूप, कोई माने और न माने हम सब कृष्ण के दास दासी हैं। इस जगत में आए हैं किस लिए, हम कृष्ण को भूल गए, कृष्ण के सेवा को छोड़ करके माया की सेवा करने लगे, इसलिए इस जगत में आए। इस चीज को याद रखो, तुमने यदि लाख वर्ष तक इस जगत में अपने सुख के लिए रुपये पैसे धन इत्यादि बटोरा, किंतु मृत्यु के बाद में ये नहीं तुम्हारे साथ में कोई जाएगा, ये समस्याएं पैदा करेंगी, तुम जगत में सुखी और शांति से नहीं रह सकते, इस चीज को समझो। इसलिए माया को हटाया एक सेकेंड के लिए और वो झट मैया की गर्भ से निकल करके, और कोई संस्कार नहीं हुआ, जात कर्म नहीं हुआ, जो होता है नाड़ी कटती है, ब्राह्मण लोग बुलाए जाते हैं, माता और बेटे को स्नान होता, अभिषेक किया जाता है, गाय रुपए पैसे धन दौलत सब दान किया जाता है, और नगारे बजते हैं, लोगों को सबको दान दिया जाता है, बधाई दी जाती है, बधाई आती है, कृष्ण का जन्म हुआ बरसाने से बधाई आई, राधा जी का जन्म हुआ नंदगांव से बधाई आई, गोकुल से बधाई आई, नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद को आनंद भयो जय कन्हैया लाल की,
हाथी दिन घोड़ा दिन और दिन पाल।
तो ये सब बधाइयां हैं होती हैं, ये नहीं हुआ, झट पट से छोड़ करके भगे, मैं माया में नहीं रहूंगा, कृष्ण ही एकमात्र हमारे पति, हमारे पुत्र, हमारे सर्वस्व यही है, कृष्ण के अतिरिक्त हमारा कोई नहीं है। हम लोग को भी ये समझना पड़ेगा, हम अभी जो कर रहे हैं क्या कर रहे हैं हम लोग नहीं जानते, किसने इतने व्यस्त हैं, जाने के समय में कोई एक तिल का भी विश्व का नहीं लेकर के जा सकते, एक केस भी नहीं जाएगा, फिर किस लिए, समझो खाओ पियो रहो अपना कर्तव्य करो, किंतु भगवान का जरूर स्मरण, इतना तो कर सकते हो कि हे कृष्ण मैं तुम्हारा हूं, मैं आपकी हूं, इसको कहने में क्या पैसा लगता है, राम राम कृष्ण कहने में क्या पैसा लगता है तेरा, उठते चलते फिरते बैठते जम्भाई लेते फिसलते हुए, सुख में दुख में, हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन ईसाई कोई भी हो, भगवान का नाम कर सकता है, इसमें कुछ भी नहीं लगता है। आप टट्टी कर रहे हैं, पेशाब कर रहे हैं, मर रहे हैं, तो अभी कृष्ण तो कह ही सकते हैं, राम राम कह सकते हैं, यही आपके लिए बहुत कुछ हो जाएगा, और संसार का किया हुआ, इसलिए वो भले व्यास जी सोचा हाँ ऐसा सुंदर लड़का, ऐसा गुणी लड़का हमें मिला, और वो भाग चला संसार से। उन्होंने कहा जी बेटा बेटा बेटा, पुत्र पुत्र, सुखदेव गोस्वामी ने नहीं सुना, सुनकर कभी नहीं सुना, और वो आगे बढ़ते गए। इसमें पेड़ों से प्रतिध्वनि आई जंगल से, कौन किसका पुत्र, पुत्र 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 कर रहा प्रतिध्वनि के रूप में, कौन किसका बेटा, कौन किसका पति, मोह ये वही कारण, मोह ही कारण है इसका शरीर में मोह, मैं शरीर हूं ये हमसे बेटा पैदा हुआ, तुम्हारा बेटा हुआ तो तुम मर जाता है फिर तुम्हारे साथ में क्यों नहीं जाता, तुम क्यों मर जाते हो, तुम्हारा बेटा तुम्हारी संपत्ति तेरे साथ में क्यों नहीं जाती, ये विचार करो तो जरा। कुछ भी नहीं जाता, हाथ मल करके भी कुछ भी नहीं जाएगा, इसलिए समझो इस चीज को। इसलिए अपना कर्तव्य करो संसार में, ठीक है स्त्री पुत्र बाल बच्चों के साथ में रहो, किंतु भगवान का स्मरण करो, और भगवान का नहीं स्मरण करता है तो सभी कुछ बेकार का है, ये चीज को समझो। यही भारतीय संस्कृति का मूल मंत्र है, इस चीज को आप लोग चले गए। इसके बाद में बहुत सी घटनाएं हुई। जब वो चला गया तो व्यास जी ने एक बहेलिए को कहा, जे तुम कहां जा रहे हो, तो कुछ पक्षियों को पकड़ने के लिए जा रहा हूं, हमारी जीवन का काम निर्वाह से होगा से बेचूंगा, ठीक है तुमको एक मंत्र पढ़ा रहा हूं, इस मंत्र को याद करके जाओ जंगल में, कहना बहुत से सुख पक्षी तुम्हारे जाल में पड़ जाएंगे। वो श्लोक क्या था, बरहा पीड़म नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम दिवस कनक कपिशम वैजयंती समालाम रंध्राण वेणु रघु सुदया पूरे अंग गोप बिंदई बृंदारण्यं सपद रमणम प्राविशत गीत। सत्य श्रीमद भागवत में कृष्ण के सौंदर्य का बहुत ही सुंदर मीठा वर्ण, बहुत ही सरस वर्ण, ऐसा श्रीमद भागवत में कोई श्लोक नहीं है जो कृष्ण का इतना सुंदर वर्णन दे सके। सुन करके वो मुग्ध हो गया, बहुत से पक्षी उसके जाल में भी पड़ गए और ये सुख भी, या सुखदेव।